इस्लामी क्रांति और समाज।
श्रोताओं, कार्यक्रम इस्लामी क्रांति और समाज की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। कायम रिजवी और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम इस्लामी क्रांति और उसके सामाजिक दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे।
डॉक्टर अली मीर सफासी ने तेहरान विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में बीए तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एमए किया, जबकि समाज शास्त्र में अमरीकी विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। डॉक्टर मीर सफासी समाज शास्त्र में दक्ष हैं और वर्तमान समय में वे न्यूयॉर्क के गैलेटिन विश्वविद्यालय के मध्य पूर्व के शोध तथा समाज शास्त्र के विभाग के प्रोफेसर हैं। वो ईरान और आधुनिक ईरान के विषय में अपने दृष्टिकोण बयान करते रहते हैं। मीर सफासी वर्ष 2007 से 2009 तक अमेरिका के कार्नेगी शोध केंद्र के शोधकर्ता भी रहे हैं।
डॉक्टर मीर सफासी के शोध अधिकतर आधुनिकीकरण, धर्म और समाज शास्त्र, विशेषकर इस्लाम एवं आधुनिकीकरण के बीच संबंध के इतिहास पर केंद्रित होते हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें कुछ के नामों के अनुवाद इस प्रकार हैं: ईरानी आधुनिकीकरण पर अध्ययन, ईरान में आधुनिकता की नीति और आधुनिक विचार के बारे में बहस, इस्लामी राजनीति, ईरान और आधुनिक विचार, आशा व निराशा का दृष्टिकोण, आधुनिक ईरान में लोकतंत्र। इन पुस्तकों का ईरान के पढ़े लिखे वर्ग ने बहुत अधिक स्वागत किया है। डॉक्टर अली मीर सफासी की जीवनी में आया है कि उन्होंने शोध और साहित्य के क्षेत्र में कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें सन 2001 में ईरान का सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता का भी पुरस्कार शामिल है। उनको तेहरान विश्वविद्यालय ने मानद उपाधि से सम्मानित किया है।
वर्ष 2000 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित ईरानी आधुनिकीकरण पर अध्ययन नामक पुस्तक ने वर्ष 2001 की बेहतरीन शोध का इनाम जीता। इस पुस्तक में ईरान में आधुनिकीकरण पर जबरदस्त शोध किया गया है और इस पुस्तक में बताया गया है कि ईरान में आधुनिकीकरण पश्चिम से प्रविष्ट हुआ है। इस देश ने कई सदियों के दौरान बहुत से उतार चढ़ाव देखे, किंतु ईरानियों ने सफवी शासनकाल के बाद जो राजनीतिक पतन का दौर तय किया, काजारी शासनकाल के बीच में आधुनिकीकरण का सामना किया और इस काल में उन्होंने अपने पिछड़ेपन की भरपाई करने का प्रयास किया और इस प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए उन्होंने कई नुस्खे आजमाए।
डॉक्टर मीर सफासी उन विचारकों में से हैं जिन्होंने ईरान की इस्लामी क्रांति की धार्मिक प्रवृत्ति सहित ईरान के बारे में प्रभावी दृष्टिकोण पेश किए। उन्होंने ईरान की इस्लामी क्रांति के बारे में विशेष दृष्टिकोण पेश किए हैं। उन्होंने ईरान की इस्लामी क्रांति में क्रांति आने में सेक्युलरिज्म की भूमिका के आयाम की भी समीक्षा की है। डॉक्टर मीर सफासी ईरान की इस्लामी क्रांति के बारे में कहते हैं कि इस्लामी क्रांति वो महत्वपूर्ण मोड़ है जिसने हमारे काल में सेक्युलरिज्म के राजनीतिक संकट को पेश किया। दूसरे शब्दों में, ईरान की इस्लामी क्रांति और ईरान के बारे में दृष्टिकोण रखने वाले दूसरे शोधकर्ताओं और बुद्धिजीवियों की भांति डॉक्टर मीर सफासी का भी मानना है कि ईरान में इस्लामी क्रांति का आना पहलवी शासन के दृष्टिगत आधुनिकीकरण के मुकाबले में ईरानी जनता के मजबूत विरोध और प्रतिक्रिया का परिणाम था, जो जनता के बीच इस्लामी संस्कृति और शिया धर्म के प्रचार का कारण बनी।
मीर सफासी का यह मानना है कि ईरान की इस्लामी क्रांति ने 1960 और 1970 के दशक में सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में ईरानी समाज को पश्चिमी रंग में ढालने और उसके पुनर्निर्माण का प्रयास शुरू किया, किंतु इस प्रकार का बर्ताव स्वयं ईरानी समाज के ध्रुवीकरण और विदेशी संस्कृति की ओर जाने का कारण बना और इसके साथ ही ये चीज़ न केवल ईरान के शाह की अत्याचारी नीतियों में बदलाव का कारण न बनी बल्कि इससे यह अत्याचार और भी मजबूत हो गया। मीर सिपासी का मानना है कि ईरान के शाह की पुनर्निर्माण की नीतियों के कारण शहरों की ओर पलायन, असमानता, निर्धनता और समाज में अन्य दूसरी बुराइयां पैदा हुईं। इससे जनता में विरोध के स्वर तेज होने लगे और इस संबंध में उनकी चेतना बढ़ती गई।
मीर सिपासी ने ईरान के आधुनिकीवाद की नीति और मॉडर्निज्म की चर्चा नामक अपनी पुस्तक में सेक्युलरिज्म संकट और इस्लामी क्रांति शीर्षक के अंतर्गत शाही शासन द्वारा ईरानी समाज को सेक्युलरिज्म के महत्वपूर्ण विषय की ओर संकेत किया है। मीर सिपासी लिखते हैं कि पहले और दूसरे पहलवी शासनकाल में आधुनिकवाद को स्वीकार करते हुए जनता की धार्मिक और पारंपरिक इच्छाओं की अनदेखी की गई और साथ ही जनता को तेजी से आधुनिक करने के लिए पहलवी शासन की हिंसाओं, आधुनिकवाद से बढ़कर तानाशाही नीति का भी प्रदर्शन दिखाई दिया। किंतु दीर्घावधि में ये नीति जनता द्वारा धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं की ओर पलटने के अतिरिक्त कोई अन्य परिणाम सामने नहीं आया।
न्यूयॉर्क के विश्वविद्यालय के इस ईरानी प्रोफेसर ने अपनी पुस्तक के तीसरे अध्याय में ये महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया है कि किस प्रकार ईरान में सेक्युलरिज्म की प्रक्रिया बंद गली में पहुंच गई और इसके परिणाम में ईरान में इस्लामी क्रांति क्यों अस्तित्व में आई। वास्तव में उनका ये मानना है कि ईरान में सेक्युलरिज्म का न केवल स्वागत नहीं किया गया बल्कि ईरानी जनता द्वारा इसे पूरी तरह नकार दिया गया और इसके परिणाम में ये योजना पूरी तरह फेल हो गई। डॉक्टर मीर सिपासी ईरान में सेक्युलरिज्म के फेल होने के कारणों का जवाब देते हुए ईरानी समाज में धार्मिक प्रवृत्ति और इस्लामी आदर्शों के पश्चिमवाद के आधुनिक आदर्शों पर प्राथमिकता की ओर संकेत करते हैं।
डॉक्टर अली मीर सिपासी कहते हैं कि सेक्युलरिज्म की विचारधारा के कमजोर होने से राजनीतिक इस्लाम उसकी संस्थाओं और उसके नेतृत्व के समर्थकों को अवसर से लाभ उठाने का मौका मिल गया और उन्होंने ईरान के नाराज लोगों को एक मंच पर जमा कर दिया। उन्होंने एक राजनीतिक लोकतंत्र पर आधारित आंदोलन के नेतृत्व का नमूना पेश किया जिसमें जनता स्वयं ही ईरान पहचान, सामाजिक एकता और नई शक्ति का आभास दिलाने लगी। राजनीतिक सेक्युलरिज्म की भांति और उसके समर्थकों में इस्लामी नीति की विचारधारा और उसके समर्थकों के मुकाबले में टिकने की क्षमता नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ठिकाने लगा दिया और इस्लामी विचारधारा मैदान मार ले गई। मीर सिपासी इस्लामी क्रांति की सफलता में इस्लामी संस्कृति और विचारधाराओं को मुख्य कारण मानते हैं और इस पर नज़र किए बिना इस्लामी क्रांति को समझ पाना संभव नहीं है। इस्लामी क्रांति की सफलता के इसी कारण पर बहुत कम ही ध्यान दिया गया है।
डॉक्टर मीर सिपासी का यह मानना है कि धार्मिक विचारधाराओं के अतिरिक्त सेक्युलरिज्म की कुछ विचारधाराओं ने भी पहलवी अधिकारियों के पुनर्निर्माण की योजना का विरोध किया। उनका कहना है कि पहलवी अधिकारियों के दृष्टिगत पुनर्निर्माण की योजना के इस्लामी और सेक्युलरिज्म दड़ों के विरोध के कारण धीरे धीरे इमाम खोमेनी के नेतृत्व में इस्लामी विचारधारा सेक्युलरिज्म विचारधारा पर जीत गई। मीर सिपासी ने बल दिया कि शिया राजनीतिक संस्कृति के अधिक विस्तार और अपनी समस्याओं के एकमात्र समाधान के रूप में इस्लामी संस्कृति के जनता द्वारा भव्य स्वागत के कारण इस्लामी विचारधारा ने मैदान मार लिया।
डॉक्टर मीर सिपासी ने जिन चीज़ों की आलोचना की है उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शाह और शाह की खुफिया एजेंसी सवाक ने कभी भी धर्म गुरुओं को अपने लिए गंभीर खतरा नहीं समझा। ये दावा ऐसी हालत में सामने आया है कि सरकार के विरुद्ध जनता को एकजुट करने में धर्मगुरुओं, विशेषकर इमाम खुमैनी के नेतृत्व के खतरे को शाही सरकार भांप गई थी, और यही कारण है कि शाही सरकार ने धर्मगुरुओं विशेषकर इमाम खुमैनी के विरुद्ध घोर अपराध किए और उनके साथ बुरा बर्ताव किया।
मोहम्मद रजा शाह के 37 वर्षीय काल में धर्मगुरुओं के साथ विभिन्न तरीके से बुरे बर्ताव किए गए। फरवरदीन 1340 हिजरी शमसी में आयतुल्ला बुरुजर्दी के हस्तक्षेप के बाद शाह वरिष्ठ धर्मगुरुओं के केंद्र को ईरान से इराक स्थानांतरित करना चाहता है। इस काल में शाह ने खुलकर धर्मगुरुओं के विरुद्ध मोर्चा संभाल लिया। मोहम्मद रजा पहलवी कदापि नहीं चाहता था कि देश में कोई शक्तिशाली धर्मगुरु हो। धर्मगुरुओं विशेषकर ईरान में मौजूद धर्मगुरुओं के भारी विरोध की अनदेखी करते हुए उसने धर्मगुरुओं का दमन किया और उनका अपमान किया। इमाम खुमैनी पहलवी द्वितीय के काल में 15 वर्षों तक जेल में रहे या देश निकाला का जीवन व्यतीत किया। धर्मगुरुओं के मुकाबले में इस रवैये से पता चलता है कि मोहम्मद रजा शाह जनता को सरकार के विरुद्ध खड़ा करने में धर्मगुरुओं की शक्ति विशेषकर इमाम खुमैनी की ताकत को गंभीरता से ले रहा था, किंतु उसने सही युक्ति अपनाने के बजाय धर्मगुरुओं के दमन का रास्ता चुना।